श्रोताओं, नवरोज पर एक विशेष चर्चा के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और मोहम्मद अली कुम्मी का सलाम स्वीकार कीजिए।
श्रोताओ, ईरान में नए वर्ष अर्थात नवरोज के अवसर पर जश्न मनाया जाता है, किंतु ये वास्तव में प्रकृति का जश्न होता है, क्योंकि नवरोज वसंत के साथ आरंभ होता है और वसंत ऐसा मौसम है जिसके बारे में पवित्र ग्रंथ कुरान में भी चर्चा की गई है। आज हम अपने कार्यक्रम में इसी विषय पर चर्चा करेंगे।
सर्दियों की बड़ी बड़ी रातों और छोटे छोटे दिनों के गुजरने के बाद जब रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं तो लोगों के कान वसंत की आहट पर लग जाते हैं। जाड़ा वसंत ऋतु की आगवानी के लिए आगे बढ़ता है और फिर बहार आ जाती है और आते ही सूखी व निर्जीव धरती पर अपना हरा भरा रंग बिरंगा आंचल कुछ ऐसे फैला देती है कि धरती का रंग रूप ही बदल जाता है और जाड़ों में सफ़ेद कपड़ों में लिपटी कराहती किसी विधवा की तरह नज़र आने वाली ये धरती अचानक ही 16 श्रृंगार के किसी दुल्हन की तरह नज़र आने लगती है। लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे जो संदेश होता है उसे मन की आँखों से ही पढ़ा जा सकता है और मन की आँखें ईश्वर से जुड़ने से ही खुलती हैं और कुरान मजीद सूझबूझ बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है।
कुरान मजीद के सूरह फातिर की आयत नंबर 9 में कहा गया है कि और वो ईश्वर है जिसने हवाओं को भेजा, फिर बादलों को भड़काया, फिर उन्हें शहरों की ओर भेजा ताकि उनके द्वारा धरती को जो मर चुकी थी फिर से जीवित करे, और ऐसा ही है प्रलय के दिन लोगों को दोबारा जीवित किया जाना।
कुराने मजिद में स्पष्ट रूप से बसंत का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन उसकी दसियों आयतों में बहार की विशेषताओं और लाभों का उल्लेख किया गया है। कुराने मजिद की बहुत सी आयतों में बादलों, वर्षा, पानी, पेड़ पौधों और फलों व बागों की बात की गई है और ये सारी आयतें वास्तव में बहार का गुण भी बयान करती हैं। इसके साथ ही हरियाली, धरती पर पेड़ पौधे उगने और खेती बाड़ी जैसे बहार के लाभों को भी कुराने मजिद में बार बार गिनाया गया है। इस तरह से यदि देखा जाए तो वसंत ऋतु एक ऐसी पाठशाला है जिसमें ईश्वर और आत्मज्ञान का पाठ पढ़ाया जाता है और ईश्वर इस तरह से उन लोगों को जवाब देता है जो ये कहते हैं कि इंसान मर जाने के बाद कैसे फिर से जीवित हो सकता है।
कुरान मजीद के सूरह बकरा की आयत नंबर 164 जन्म व मृत्यु की इस पूरी प्रक्रिया और उससे मिलने वाले पाठ की ओर इशारा करती है। इस आयत में कहा गया है कि निश्चित रूप से आकाशों, धरती की रचना, रात दिन के अंतर और समुद्र में दौड़ने वाली नौका के जिससे लोगों को फायदा होता है और जो ईश्वर आकाश से पानी बरसाता है और फिर उससे मर जाने वाली धरती में प्राण फूंकता है और धरती पर जो उसे भांति भांति के जानवर फैलाए हैं, ये जो हवा चलती है और जो ज़मीन और आसमान के बीच सधे हुए बादल हैं, ये सब बुद्धि रखने वालों के लिए चिन्ह है।
ये तो वास्तव में सोचने व चिंतन करने का चरण है जिसका उल्लेख कुरान मजिद की इस आयत में किया गया है और फिर इस भूमिका के बाद ये चरण और वो पाठ है जिसका उल्लेख कुरान मजिद के सूरह नूह की आयत नंबर 17 और 18 में किया गया है। इस आयत में कहा गया है कि और अल्लाह ने तुम्हें धरती से उगाया है, फिर तुम्हें वहीं लौटा देगा और फिर वहीं से निकालेगा। इस आयत में मनुष्य के इस नश्वर संसार के जीवन का सार पेश किया गया है और ये बताया गया है कि इंसान मिट्टी से बना है और एक दिन उसे उसी मिट्टी में मिल जाना है और यहीं पर सब कुछ खत्म नहीं होगा। मिट्टी में मिल जाने के बाद कयामत के दिन ईश्वर फिर से उसी मिट्टी से इंसान को निकालेगा और उससे उसके कर्मों का हिसाब लेगा।
कुरान मजीद के विभिन्न आयतों में चिंतन पर बहुत बल दिया गया है और इसके लिए समुद्र, संगम, नदी, वर्षा, पहाड़, आकाश, धरती, हवा, तूफान, सूरज, सितारे, चांद, पेड़, पौधे और इस तरह से बहुत से प्रकृति के रूपों का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि इन पर विचार किया जाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि यह दुनिया ईश्वर का दर्पण है और इस दुनिया में विदित रूप से बसंत ईश्वर की महानता का वो दृश्य है जो इस प्रकृति रूपी दर्पण में सबसे अधिक साफ दिखाई देता है।
ये दृश्य जो देख लेता है उसके सामने सांसारिक सुख की सच्चाई खुलकर सामने आ जाती है और वो इस लोक के क्षणिक सुख को त्याग कर परलोक के सदैव रहने वाले सुख के लिए काम करता है और उसके लिए स्वयं को तैयार करता है। लेकिन जिसके मन की आंखें बंद होती हैं वो इसी संसार के जल्द ही खत्म हो जाने वाले सुखों को प्राथमिकता देता है और इस संसार को जो वास्तव में परलोक के गंतव्य का मार्ग है गंतव्य समझ लेता है और वास्तव में ऐसे लोगों को बहुत घाटा होता है। लेकिन जब उनको इस बात का आभास होता है तो फिर बहुत देर हो चुकी होती है।
ईश्वर ने सत्य को सबके सामने प्रकट करने की व्यवस्था की है और इसीलिए वो मौसमों के बदलने की प्रक्रिया की मिसाल देकर मनुष्य को फिर से जीवित किए जाने के विचार को सिद्ध करता है। जैसा कि कुरान मजीद के सूरह हदीद की आयत नंबर 17 में आया है कि जान लो कि निश्चित रूप से अल्लाह धरती को उसकी मौत के बाद दोबारा जीवित करता है। हमने तुम्हारे लिए आयतों को स्पष्ट रूप से बयान किया है कि शायद तुम्हें अक्ल आ जाए। इसी प्रकार सूरह फातिर की आयत नंबर 9 में कहा गया है कि वो अल्लाह है जिसने हवा को भेजा तो उसने बादलों को भड़काया, फिर उसे हमने मृत नगर की ओर भेजा और हमने धरती को मौत के बाद फिर से जीवन प्रदान किया और मनुष्य का दोबारा जीवित होना भी ऐसे ही है।
इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि वसंत का मौसम धर्मों में दोबारा जीवित किए जाने की विचारधारा का उदाहरण है। इस उदाहरण को हम हर साल देखते हैं इसलिए हमें उससे पाठ लेना चाहिए। इतिहास के अनुसार पैगंबर इस्लाम के एक अनुयायी ने उनसे पूछा कि अल्लाह किस प्रकार प्रलय के दिन मरे हुए इंसानों को फिर से जीवित करेगा, क्या इस संसार में इसकी कोई मिसाल है। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि क्या तुमने कभी सूखाग्रस्त और मरी हुई ज़मीन को देखा है, क्या कुछ दिनों के बाद वही ज़मीन तुम्हें हरी भरी नज़र नहीं आई। उस अनुयायी ने कहा जी हाँ। पैगंबर इस्लाम ने कहा ईश्वर इसी प्रकार मुर्दों को फिर से जिंदा करेगा और ये इसी सृष्टि में मौजूद उदाहरण है।
अंत में ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से मौसम बदलाव के जरिए अपने अंदर अपार सुंदरता भर लेता है उसी तरह हम भी नए विचारों और नए व्यवहारों से खुद को सुसज्जित कर सकते हैं। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हर वसंत ऋतु अपनी समस्त सुंदरताओं के बावजूद हमें ये याद दिलाता है कि हमारी उम्र का एक साल कम हो गया, इसलिए हमें हर क्षण से लाभ उठाना चाहिए और उसे किसी अच्छे काम के लिए प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कीमती लम्हों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने मशहूर अनुयायी अबूजर से कहा कि हे अबूजर, पाँच चीज़ों के आने से पहले पाँच चीज़ों से लाभ उठाने का अवसर न गवाओ। बुढ़ापे से पहले जवानी से, बीमारी से पहले स्वास्थ्य से, निर्धनता से पहले धन व दौलत से, व्यस्त होने से पहले समय से और मौत से पहले जीवन से।
श्रोतो, इसी के साथ हमारी आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। अगली चर्चा तक के लिए अनुमति दीजिए।